नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन के साथ अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। बीटिंग रिट्रीट समारोह आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की तैयारियों पर चिंताओं के बीच आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ एलार्डिस ने पद से इस्तीफा दिया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की घटना की स्थिति की जानकारी लेने के लिए उनसे कई बार बात की। मेला क्षेत्र में आज सुबह हुई दुर्घटना के बारे में उन्होंने कहा कि अवरोधों को पार करने की कोशिश में कुछ श्रद्धालु घायल हुए।
रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के रीत से मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से लगा हुआ है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्थिति की जानकारी के लिए उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अपने समीप के घाट पर स्नान करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए।
महाकुंभ में हुई घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ने जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद देने में जुटा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस दुखद हादसे पर उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि घायलों का अस्पतालों में इलाज हो रहा है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं संगम क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र
जी,
फिलहाल वहाँ क्या स्थिति है और किस तरह का माहौल है?
निखिल, देखिए, संगम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है फिलहाल स्नान कर रहे हैं और इनका आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। श्रद्धालु जो है पवित्र स्नान के बाद संगम घाट पर पूजा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। अगर बात करूं तो अभी तक कुल 4 करोड़ से अधिक लोग जो है संगम में अमृत स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले जो मकर संक्रांति के दिन जो पहला अमृत स्नान हुआ था उस वक्त लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और पूरे अब तक महाकुंभ में लगभग 24 करोड़ से अधिक लोग जो है स्नान कर चुके हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मेला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। घाटों के किनारे एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अलावा जो है ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है पूरे मेला क्षेत्र की जो है निगरानी की जा रही है और मेला प्रशासन भी है लोगों से अपील कर रहा है कि वो किसी भी अफवाह पर जो है बिल्कुल ध्यान न दें। इसके अलावा श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वो जिस सेक्टर से स्नान करने जा रहे हैं उसी सेक्टर से वापस आ जाएं। जी निखिल
जी, रेलवे ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया है।
महाकुंभ के लिए भारतीय रेल द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ के दौरान भारतीय रेल द्वारा 13,400 से अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी बातें सामने आई है कि रेलवे ने गाड़ियों को कैंसिल किया है, इस बात में सच्चाई नहीं है। भारतीय रेलवे ने जिन गाड़ियों को चलाने की घोषणा की है उन सारी गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है जिसमें विशेष गाड़ियां भी शामिल है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में 31 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 6 महीनों में विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे उसका अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया सभी सदस्यों ने। पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है जिसको अडॉप्ट किया गया है। कल हम लोग इसको स्पीकर साहब को प्रस्तुत कर रहे हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने पर सवाल उठाया है। डीएमके सांसद ईराजा ने कहा कि रिपोर्ट को जल्दबाजी में अपनाया गया। वहीं कांग्रेस के नसीर हुसैन ने कहा कि उनके द्वारा की गई आपत्तियों और सुझावों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत और अन्य विपक्षी सांसदों ने कहा कि उन्होंने अपनी असहमति लिखित रूप में दर्ज कराई है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता रैलियों तथा रोड शो के अलावा घर घर जाकर भी प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि दिल्ली के लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए आवास का निर्माण करे, दिल्ली को आधुनिक बनाए और सभी घरों को नल से जल उपलब्ध कराने के साथ ही टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। आज दोपहर बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में यमुना खादर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की बहानेबाजी, लूट और झूठ जारी नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आपके 25 साल के शासन में दिल्ली की समस्या ज्यों की त्यों है और इन दोनों दलों ने 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के दिल्ली में सत्ता में आने के बाद लोगों से किए गए वादे समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने की बात कही और कहा कि ये मोदी की गारंटी है।
दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूँ, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है।
इससे पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज रोड शो करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ घोषणा पत्र जारी किया। इनमें महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2,500 रूपये, 25 लाख रूपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 500 रूपये में LPG सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। श्री रमेश ने कहा है कि गारंटी का मतलब ये है कि जनता का अधिकार है और उन्होंने शहर में प्रदूषण के मुद्दे की कथित रूप से अनदेखी करने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा।
दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफी विचार भी हो चुका है। दिल्ली में व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है, यानी कि सांस लेने की आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आयोजन बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखते हुए यातायात के प्रबंध किए हैं। विजय चौक आज सामान्य यातायात के लिए दिन के 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक बंद है। रायसीना रोड पर कृषि भवन गोल चक्कर और सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर से विजय चौक के लिए यातायात की अनुमति नहीं है। रफी मार्ग पर भी सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर और कृषि भवन गोल चक्कर से भी यातायात बंद रहेगा। परामर्श के अनुसार विजय चौक और सी हेक्सागन के बीच कर्तव्य पथ पर भी यातायात पर पाबंदी है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। इसमें सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं और घरेलू तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय रणनीतियां होंगी। विशेषज्ञ और लोगों को उम्मीद है कि इस बार सरकार का ध्यान देश में सुदृढ़ ढांचे के निर्माण पर जोर देकर आर्थिक वृद्धि, सृजन और वित्तीय कुशलता पर होगा। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। पुलिस बलों पर हमला करने की योजना बना रहे माओवादियों का एक दल था, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जॉफ अलॉर्ड्स के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि की है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की तैयारी पर चिंताओं के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपने विदाई संदेश में श्री अलॉर्ड्स ने कहा कि उन्हें क्रिकेट को वैश्विक पहुंच बढ़ाने से लेकर ICC सदस्यों के लिए व्यावसायिक आधार तैयार करने पर बेहद गर्व है। ICC के अध्यक्ष जय शाह ने भी श्री अलॉर्ड्स को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के कई स्टेडियम में नवीनीकरण का काम देरी से चल रहा था और यहां तक कि टूर्नामेंट की समय सारणी में भी देरी से जारी की गई थी। पूर्व भारतीय कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली में घरेलू क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं। रणजी ट्रॉफी में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ खेलेंगे। यह मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने घोषणा की है कि दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। गुवाहाटी में इंडियन सुपर लीग में आज शाम 7:30 बजे इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का मुकाबला हैदराबाद फुटबॉल क्लब से होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC 6 मुकाबले जीतकर और 7 ड्रॉ के साथ अभी 6ठे स्थान पर है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मैच में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने पंजाब फुटबॉल क्लब को 2-1 से हरा दिया। अब जमशेदपुर फुटबॉल क्लब 3रे स्थान पर है। पंजाब फुटबॉल क्लब इस सीजन में 7 में से 1 भी मुकाबला नहीं जीत सका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुचारू रूप से जारी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन के साथ अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। बीटिंग रिट्रीट समारोह आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की तैयारी पर चिंताओं के बीच ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉफ लॉर्ड्स ने पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।